कुछ समाचारों में कैनबरा हवाई अड्डे को टर्मिनल के अंदर गोली चलने की सूचना के बाद खाली कराया गया। एक पूर्व अफगान द्विभाषीय ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन सैनिकों को हमलावरों से बचाने के अपने प्रयासों पर बताया। और भारत में मध्य प्रदेश के धार के कारम डैम में रिसाव जारी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। कैनबरा हवाई अड्डे के टर्मिनल में गोलीबारी की खबरों के बाद हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया। कथित तौर पर एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चेक इन काउंटर्स के पास 3 गोलियां चलाई गईं।
I just need to reassure people that the airport is safe, that ACT policing have responded, and there is no ongoing threat to the community or to passengers arriving and departing. As you can appreciate, the airport is currently closed, and we have a number of incoming and outbound flights that are waiting to arrive into Canberra.
Gate Group का कहना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के अधिग्रहण के बाद से देश की आधी से अधिक आबादी एक साल में अत्यधिक खाद्य असुरक्षा के साथ जी रही है। अफगानिस्तान की अनुमानित आबादी 41.7 मिलियन है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के माध्यम से देश की संपत्ति को फ्रीज करने से भारी आर्थिक गिरावट आई है, जिसने मुख्य रूप से आम अफगानी लोगों को प्रभावित किया है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के अफगानिस्तान के निदेशक नील टर्नल के अनुसार देश पर लगाए गए प्रतिबंधों ने लाखों और अफगानियों को गरीबी में धकेल दिया है।
We're seeing people with their salaries reduced, with their income reduced, taking on greater debt, using coping strategies which include early marriage for girls, child labor. It's an extreme situation.
पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने से अफगानिस्तान में कट्टरपंथी आंदोलन फिर से सत्ता में आ गया। 20 वर्ष पहले 9/11 के हमलों के बाद US आक्रमण द्वारा उन्हें हटा दिया गया था। एक पूर्व अफगान द्विभाषिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन सैनिकों को एक खतरनाक हमलावर से बचाने के अपने प्रयासों के बारे में बात की है। काबुल के पतन के एक साल बाद फरीद रमन अब मारे गए सैनिकों में से एक के परिवार से मिले हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने डर को साझा करते हुए बताया।
He was injured on the right side, near the ribs. He had one shot. So I had to calm that down. I mean, just to give him more support of coming down, and I got one in my leg. On the way back, I got 3 other rounds, which I've seen them going out of my left side.
SBS Pashto or SBS World News Dwara, Sham 6:30 PM. SBS TV चैनल ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म और न्यूज वेबसाइट पर इस पूरी एक्सक्लूसिव स्टोरी को सुने और देखें। लेखक सलमान रश्दी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। जिस व्यक्ति पर बार बार छुरा घोंपने का संदेह है, उसने न्यूयॉर्क की एक अदालत में स्वयं को दोषी मानने से इनकार किया है। 75 वर्षीय सलमान रश्दी को कलात्मक स्वतंत्रता पर एक व्याख्यान देना था, जब उन पर हादी मटर ने हमला किया। हादी मटर पर अब हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है और उसे बिना बॉन्ड के रखा जा रहा है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने खुद को अभिव्यक्त करने के रश्दी के अधिकार का बचाव किया है।
Here's an individual who has spent decades speaking truth to power, someone who's been out there unafraid despite the threats that have followed him his entire adult life, it seems. And it happened at a site that is a place that's very familiar to me, a very tranquil rural community known as Chautauqua.
वर्षों से श्री सलमान रश्दी के सिर पर कई मिलियन डॉलर का इनाम था। 1999 के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस, जिसे कुछ मुसलमानों द्वारा ईश निंदा माना जाता है, उस पर प्रतिक्रिया के बाद रश्दी एक दशक तक पुलिस सुरक्षा के तहत रहे हैं। सिडनी के दक्षिण पश्चिम में रात में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या करने के बाद पुलिस ने मीडिया को संबोधित किया है। रिवर्सवी के वेस्टर्न स्ट्रीट पर एक कार के अंदर एक 36 और एक 48 वर्षीय महिला बंदूक की गोली के घाव के साथ मिली। कार के अंदर दो अन्य लोग, एक पुरुष और एक महिला, भी जीवित और बिना किसी घायल स्थिति के पाए गए। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के होमिसाइड स्क्वाड के कमांडर अधीक्षक डेनी डोहाटी का कहना है कि उनका मानना है कि ये एक लक्षित हमला था।
This is an appalling attack on two women who have lost their lives in a planned murder and assassination, really, that's happened in a public street in Sydney. It's not acceptable by any standards. It's unprecedented, really. And we're determined to get the answers for the family.
कार्यवाहक प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने जोर देकर कहा है कि ताइवान के कारण क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बावजूद चीन के साथ बेहतर संबंध अब भी संभव है। अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी इस महीने की शुरुआत में ताइवान के दौरे के जवाब में चीन के कई सैन्य अभियान करने के बाद श्री माल्स ने ताइवान स्ट्रेट में स्थिति को कम करने का आह्वान किया है। चीन ने कहा है कि उसने सैन्य अभ्यास समाप्त कर लिया है और श्री मार्स ने स्काई न्यूज को बताया ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ अपने संबंधों को स्थिर करना चाहता था।
There are going to be challenges going forward. At the same time, you know, we acknowledge they're our largest trading partner and we value a productive relationship with China. We do want to see the relationship in a better place, but we'll continue to articulate our national interest and we will see how far down this road we can walk.
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनका देश किसी भी रूसी सैनिकों को निशाना बनाएगा जो ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र पर गोली चलाते हैं या इसे शूट करने के लिए बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस साल की शुरुआत में रूस ने परमाणु सुविधा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी यूक्रेनी इंजीनियर्स द्वारा ये संचालित है। यूरोप के सबसे बड़े बिजली संयंत्र पर गोलाबारी की कई हालिया घटनाओं पर यूक्रेन और रूस ने आरोप प्रत्यारोप जारी रखा है। अपने शाम के संबोधन में बोलते हुए ज़ेलेंस्की, जिन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि रूस संयंत्र का परमाणु ब्लैकमेल के रूप में उपयोग कर रहा था।
And absolutely all officials of the terrorist state, as well as those who helped them in this blackmail operation with the nuclear plant, must answer in an international court. It will definitely happen. And every Russian soldier who either shoots at the station or shoots under the cover of the station must understand that they are becoming a special target for our intelligence, for our special services, for our army.
और भारत में मध्य प्रदेश में बांध टूटने के खतरे के बीच घर वापस लौट रहे हैं ग्रामीण। इन ग्रामीणों को जिन सुरक्षित स्थान पर रखा गया था वो डैम साइट से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन प्रशासन के निर्देश की अवहेलना करते हुए ये सभी डैम में जारी रिसाव के बीच अपने गांव लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश धार के कारम डैम में रिसाव जारी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर समय रहते इस रिसाव को बंद नहीं किया गया तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। ग्रामीणों का गांव वापस लौटने का कारण उनके मवेशी और खेत को बताया जा रहा है। 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बढ़ते दबाव में बांध को टूटने से बचाने के लिए इंजीनियर और जल विज्ञान विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 56 रुपए 73 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में, कोस्टारिका में फीफा अंडर 20 विश्व कप में अपने दूसरे मैच में यंग मेटल्डास को ब्राजील से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 3 दिन पहले मेजबान कोस्टारिका पर अपने प्रभावशाली 3-1 से जीत दायर की थी। ऑस्ट्रेलिया अपने अंतिम पूल मैच के लिए बुधवार 17 अगस्त को स्पेन के साथ खेलेगा। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी सोमवार को पर्थ में बौछारों में तेजी आएगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। होबार्ट में बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। और डार्विन में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।